हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो साहूकारिनी उस तीसरे जादुई बावर्ची का सुडोल सुगठित जिस्म देखकर उस पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी, तो इसीलिए वो केवल नाम के लिए ही उसे टेस्ट कर रही थी। केस अगर कुछ बनाना आता है या नहीं आता है तो भी ये उसे किसी न किसी काम पर अपने पास रख लेगी और मौका देखकर उसके जिस्म का फायदा उठाएगी। और सीधा मैं एक ऐसे गांव में पहुंचा था जहां पर काफी सारे लोग हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उसका साहूकार अब काफी ज्यादा कमजोर और बूढ़ा सा हो चला था। क्योंकि साहूकारिनी उससे पहले ही गरीब परिवार की बेटी हुआ करती थी, लेकिन साहूकार की नज़र जैसे ही उसकी खूबसूरती पर पड़ी तो उसने उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया था। और उसके माँ बाप ने भी पैसों के लालच में उसकी उम्र से दोगुना साहूकार के साथ उसका ब्याह रचा दिया था। और तब से वो एक रानी की तरह जिंदगी गुजारने लगी थी। लेकिन उसकी जिस्मानी कुछ जरूरत थी जिसे उसका बूढ़ा साहूकार यानी कि उसका बूढ़ा सौहर पूरा नहीं कर पाता था, तो इसीलिए वो अपने आसपास मजबूत जिस्म वाले मर्द की तलाश में रहा करती थी। और तभी उसकी नज़र तीसरे जादुई बावर्ची पर पड़ी थी। जिन महाराज, मुझे नहीं पता था कि आखिरकार उस औरत का इरादा क्या है। तब मैंने उनके लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी, और जैसे ही मेरी खीर बनकर तैयार हुई तो उस औरत ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वो खीर उसके सामने पेश करूं। तो मैंने देरी ना करते हुए जल्दी ही वो खीर उसके सामने पेश कर दी थी। और खीर की पहली चम्मच खाते ही न जाने उस औरत को क्या हुआ, उसने लगातार पूरी की पूरी कटोरी खीर होठों से लगाकर पी ली थी। तब मुझे इस बात से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि शायद उन्हें मेरी बनाई हुई खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन खीर खाने के बाद वो मुझे बड़े ही अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। मुझे लगा कि शायद ये औरत ज़हनी तौर पर बीमार है जो अचानक से ये इस तरह का बर्ताव कर रही है। और तभी अचानक उसके कमरे में जितने भी नौकर जाकर मौजूद थे उन सभी को उसने वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, और फिर अचानक वो मेरे पास आकर मुझे बड़ी ही बुरी तरह से देखने लगी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। मेरी हैरानी की उस वक्त कोई सीमा नहीं थी। जिन महाराज, अमन बड़े ही ध्यान से उसे बावर्ची की एक एक बात को सुन रहे थे। तभी उस बावर्ची का एक साथी उसके पास आया था और कहने लगा था, तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार तुम है कहाँ रहे थे और कौन से गाँव में रह रहे थे? हम लोगों ने भी जिन महाराज के वरदान के बाद नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जीने का फैसला किया था और उसमें सक्सेसफुल हुए थे। हम बड़े ही आसानी से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां हम नॉर्मल इंसानों की तरह रह पा रहे थे। फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम इंसानी मांस खाने पर मजबूर हो गए? जैसे ही उसके साथी बावर्ची ने ये पूछा, वो बावर्ची की आंखों से एकदम से आंसू निकलना शुरू हो गए थे और अचानक से उसने रोते हुए कहना शुरू कर दिया था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसानी मांस खाकर मैं कितना बड़ा गुनाह किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जिन्नातों के नियम के सख्त खिलाफ है और जिन महाराज मुझे इसकी सजा भी देंगे। लेकिन जिन महाराज ने मुझसे पूछा है कि आखिरकार मुझे इंसानों के मांस खाने की आदत क्यों लगी, तो बस मैं उन्हें वही बता रहा हूँ। जैसे ही उस बावर्ची ने ये कहा, तब जो इससे पहले कि उसकी साथी बावर्ची कुछ और बोलता, अमन ने अपना हाथ आगे कर दिया था और कहने लगा था, सबसे पहले हमें इसकी पूरी बात सुननी होगी कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था, और उसके बाद हम इस बात का डिसीजन लेंगे कि आखिरकार इसको सजा क्या दी जानी है। जैसे ही अवनी ने ये कहा, पूरे के पूरी हवेली में एकदम खामोशी सी छा गई थी और सभी के सभी उसे तीसरे जादुई बावर्ची की ओर देखने लगे थे। तभी उस बावर्ची ने आगे कहना शुरू कर दिया था, जिन महाराज, मुझे नहीं पता था उस औरत के क्या इरादे थे, और अचानक से उस औरत ने मेरे पास आकर मुझे बड़ी ही बुरी तरह से सूंघना शुरू कर दिया था। मैं उसे वक्त काफी ज्यादा हैरत था। एक बार को मेरा मन किया कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जिन महाराज, वो औरत कमल की खूबसूरत थी। उसे देखकर मैं वहां से जाने के बारे में केवल सोचता ही रहा, लेकिन वहां से नहीं गया। और वो उस औरत ने अचानक आकर मेरे करीब आने के बाद उस औरत की आंखें अपने आप ही बंद होने लगी थी। मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि मैं तो सिर्फ सावधानी से खड़ा था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर अचानक से वो औरत मेरी ही बाहों में बेहोश हो गई थी। तब मैं हल्का सा हकलाते हुए सभी लोगों से बोला था कि प्लीज जल्द से जल्द सबके सब यहाँ आ जाइए, इन मैडम को कुछ हो गया है। जैसे ही मैं इस तरह से चिल्लाया, तीन से चार औरतें वहां और आ गई थी, और अचानक से उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया था और फिर उस औरत को लिटा दिया था। मैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि अचानक से उस औरत को क्या हुआ, वो मेरे पास आते ही बेहोश कैसे हो गई। तो मैं बस यही जानने के लिए अचानक से मैंने अपनी जादुई जिन शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं गायब होकर उसके कक्ष में चला गया था, क्योंकि मुझे ये देखने की लालसा मेरे मन में जन्म ले चुकी थी कि आखिरकार उस औरत को हुआ क्या था। और जैसे ही मैं वहां गया तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने देखा कि उस औरत को बाकी के तीन से चार औरतों ने घेर कर रखा था और वो औरत में एक मांस का टुकड़ा उसकी नाक के पास लेकर जा रही थी और ऊपर उठा रही थी, लेकर जा रहे थे और ऊपर उठा रहे थे। ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और जैसे ही उसे मांस की खुशबू उस औरत के नाक के अंदर गई तो अचानक से ही उसे होश भी आ गया था। जैसे ही मैंने ये सब कुछ देखा तो मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये औरत कर क्या रही है। और उस औरत ने होश में आते ही बाकी के तीन से चार औरतों से कहा था, वो आदमी कहाँ गया जो हमारे कक्ष में मौजूद था। जाओ जाकर उसे बुला कर लाओ। जैसे ही उस औरत ने मुझे बुलाने का हुक्म दिया तो मैं वापस से एक बार जल्दी से वहां से बाहर निकलकर उसके कक्ष के बाहर नॉर्मल इंसान के रूप में खड़ा हो गया था। और तभी एक औरत मुझे बुलाने के लिए आई और मैं जल्दी से अंदर चला गया था। तब वो औरत मुझे देखते हुए कहने लगी थी, हमने तुम्हारी इतनी स्वादिष्ट खीर आज से पहले जिंदगी में कभी भी नहीं खाई है। हम नहीं जानते तुम कौन हो या कौन नहीं हो, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करोगे। जैसे ही उस हसीन औरत ने मुझे नौकरी दी तो मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो दो टाइम की रोटी का जुगाड़ हो गया है। क्योंकि मैं इंसानों की तरह रहना चाहता था। मैं चाहता तो अपनी जादू के द्वारा कितने ही खानों का ढेर लगा सकता था, हर तरह का खाना खा सकता था। लेकिन क्योंकि जिन महाराज जी ने हमें नॉर्मल इंसानों के जैसे जीने का वरदान दिया था तो मैं बस वही उसी तरह से जीना चाहता था। तब उस औरत ने मुझे कहा था कि आज से मैं उसके कक्ष के बराबर वाला जो कक्ष है उसी में रहूंगा और हर रोज सुबह शाम दोपहर में मैं ही उसके लिए खाना बनाऊंगा। और आप तो जानते हैं खाना बनाना तो हमारी एक कला है। तो मैंने खुशी खुशी उस औरत की बात मान ली थी। और वैसे भी मैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही वहां रहने वाला था। और फिर अचानक रात को जब मैं सोया तो रात की आधी रात के बाद अचानक से मुझे उसी औरत के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई थी।
मैं काफी ज्यादा हैरान था। मेरा एक दिल किया कि मैं गायब होकर एक बार फिर देख कर आऊं कि आखिरकार उस औरत के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है। लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं वहां नहीं गया। मैंने सोचा कि मुझे इस तरह से किसी औरत के कमरे में बार बार नहीं जाना चाहिए, ये सही बात नहीं है। इसीलिए मैं वहां उसे देखने नहीं गया। और फिर अगली सुबह जैसे ही मैं उठकर मैंने फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता उनके लिए तैयार किया। और जैसे ही नाश्ता लेकर मैं उसके कमरे में आया तो मैं ये देखकर पूरी तरह से चौंक गया कि वो औरत आज पहले से भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। मैं काफी ज्यादा चौंक गया था कि आखिरकार हो क्या रहा था। और जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ का बना नाश्ता खाया तो एक बार फिर उन्होंने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी थी। और जैसे जैसे वो तारीफ करती थी मेरा दिल खुशी से झूम उठता था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हसीन औरत थी।